نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين يوم يجمعكم جس دن وہ جمع کرے گا کم تم کو اور تم سے مراد کون کون ہے جتنے بھی جن انسان اول آخر سب سب کو جمع کرے گا لیوم الجمعی اس جمع ہونے کے دن ذالک یوم التغابن وہ دن ہے تغابن کا غبن کا دن ہے ہار جیت کا دن وہ ہے ہار جیت کا دن جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا کوئی ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا اسی لیے فرمایا نا یجمعکم اس دن میں اور آپ بھی جب وہاں موجود ہوں گے وہ دن غبن کا دن اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غبن کا دن ہے نقصان کا دن کون کس سے غبن کرے گا مومن کافروں سے غبن کریں گے کیونکہ غبن دیکھیں کیا کہا جاتا ہے ایک آدمی جب دوسرے کو نقصان پہنچائے یا یہ نہ کہ کسی کو اس کے حصے سے محروم کر دے اور یہ محرومی مال میں بھی ہو سکتی ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتی ہے اب وہاں کون سا غبن ہوگا وہاں کیسے غبن کریں گے کافر مسلمانوں کو سوری مسلمان مومن کافروں کو کیسے غبن کریں گے یہ ایک حدیث سے ہمیں واضح ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے آخرت میں دو گھر رکھے ہیں پتہ ہے ہمارا ایک گھر وہاں پہ نہیں ہے دو گھر ہیں ہر ایک انسان کے ہیں ایک جہنم میں ہے اور دوسرا جنت میں سمجھ لیں پلاٹ لیے ہیں وہاں پہ بھی زمینیں ہیں ایک زمین جنت میں اور دوسری ہے جہنم میں اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کا وہ مقام دکھایا جائے گا جو ایمان اور عمل نہ ہونے کی صورت میں اس کے لیے مقرر تھا یعنی جنت میں جانے سے پہلے اس کو پہلے وہ دکھایا جائے گا جو جہنم میں اس کا مقام تھا کہ اگر تم یہ ایمان اور عمل صالح نہ لے کر آتے تو تم یہاں پہ ہوتے ہیں یہ کیوں دکھایا جائے گا تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کو قدر آئے جنت میں اپنے مقام کی وہ اللہ کا مزید شکر ادا کرے اس لیے اسی طرح اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے ان کا وہ جنت والا مقام دکھایا جائے گا کہ اگر تم ایمان اور صالح عمل لے کر آتے نا تو تم یہاں پہ ہوتے ہیں اس لیے تاکہ ان کو اور زیادہ حسرت ہو ہائے کاش ہم ایمان لے کر آ جاتے کاش ہم نیکیاں کر کے آتے اتنا خوبصورت مقام ہمارے لیے ہوتا اب کیا ہوگا اب غبن کیا ہے اب غبن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے بات ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا اب جنت والی تو اس کی جگہ اس کا پلاٹ خالی رہ گیا نا تو اب یہ پلاٹ کس کو دے دیا جائے گا اہل جنت کو مل جائیں گے ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے اور جہنم میں بھی جو ایک جگہ ہے اس کی ہر ایک انسان کی ایک جگہ ہے تو کتنی خالی جگہ جہنم میں بھی رہ جائے گی اب وہ کس کو دے دی جائے گی وہ اہل جہنم کے حصے میں آئے گی تو اس طرح جنتی لوگ جہنمی لوگوں کے جو جگہ ہے جنت میں اس کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے تب وہ جہنمیوں کو اتنا زیادہ اپنے خسارے کا اور نقصان کا اتنا زیادہ احساس ہوگا یہاں ہم نے کیا چھوڑ دیا اور یہ کیا ہم نے پایا ظاہر ہے کتنی بڑی حسرت ہوگی ये है फिर हार जीत का दिन, ये है वो दिन के फिर कितनी बड़ी हार है और कितनी बड़ी हसरत है उन लोगों के लिए। इसीलिए इस दिन को यौमुल हसरा भी कहा गया है ना, हसरत का दिन। उस दिन हर कोई हसरत करेगा, हर कोई, एक एक इंसान हसरत कर रहा होगा। सोचें कि साले मोमिनीन भी हसरत करेंगे कि हाय काश हम और ज्यादा अमल लेकर आते, हमने इतनी भी थोड़ी कमी क्यों रह गई, थोड़ा भी वक्त हमने क्यों जाया कर दिया। और जालिम तो जाहिर है, जो बदअमल लोग होंगे वो तो हसरत करेंगे ही, जिन्होंने जिंदगी वेस्ट की होगी। तो कयामत के दिन सब के सब अपनी कोताही पर, अपने अमल की कमी पे, गबन के ऊपर, उनको गबन का एहसास होगा, उनको खसारे का एहसास होगा। गबन है ना नुकसान, खसारा, लॉस, लॉस का एहसास हर एक को होगा। इसीलिए इसको यौमुत तगामुन कहा गया। और इसीलिए हदीस भी है ना कि जिस मजलिस में इंसान बैठे और पूरी मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना करे, वो मजलिस कयामत के दिन उसके लिए हसरत बन जाएगी, काश मैं उस मजलिस में ना बैठता। तो ये जिंदगी का, ये इस लाइफ का ना जो दुनिया में गुजारी है, इसका एक एक लम्हा जो अल्लाह के जिक्र के बगैर, जो कोई नेक अमल किए बगैर गुजरा, वो सब औकात के ऊपर इतनी हसरत करेगा, और उसको फीलिंग ऑफ लॉस होगी। जो गबन है ना, ये क्या है, फीलिंग ऑफ लॉस, इंतहाई रिग्रेट इस चीज का कि क्यों मैंने ये वेस्ट किया। हर एक इंसान को अपनी जिंदगी की वो लम्हे, वो दिन, वो रातें याद आएंगी, जिनमें वो अमल करके जन्नत के और दर्जे कमा सकता था। या जो काफिर हैं उनको याद आएंगे ये सारे दिन, ये जिनके अंदर वो कोई काम करके अपने लिए जहन्नम से छुटकारा पा सकते थे। ये इसलिए गबन का दिन है। और फिर देखें एक और तरीके से भी गबन है वहां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, तुम जानते हो मुफलिस कौन है? मुफलिस हम किसको कहते हैं? सहाबा ने अर्ज किया जो हमारी जुबान में होता है कि जिसके पास माल वगैरह ना हो, पैसा वगैरह ना हो, हम उसको मुफलिस समझते हैं, ये फकीर किस्म का इंसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कयामत में अपने साले आमाल का जखीरा लेकर आएगा, नमाज, रोजा, जकात, हज, उम्रे किए में, इतने इतने सदके दिए में, बड़ी बड़ी नेकियां की हुई हैं, जखीरा लाएगा पूरा, एक उसके पास ढेर होगा इन चीजों का। मगर उसका हाल ये होगा, दुनिया में किसी को गाली दी, किसी पे बोहतान लगा दिया, किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया, किसी का माल ना हक हथिया लिया। आप देखते हैं ना, बाज़ लोग बहुत नमाजी, परहेजगार, जमात से नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, मगर जाहिर सी बात है अखलाक किरदार के अंदर ऐसे हैं कि कभी किसी को तकलीफ दे रहे हैं, कभी किसी की बुराइयां, कभी किसी के खिलाफ साजिशें, कभी किसी को तकलीफ, कभी दूसरे को तकलीफ, इस पे जुल्म, उससे ज्यादती। तो अब क्या होगा, अब ये सारे लोग जमा हो जाएंगे, अपने हकूक का मुतालबा करेंगे, कोई उसकी नमाज ले जाएगा, कोई उसका रोजा ले जाएगा, कोई उसकी जकात ले जाएगा, कोई उसकी तहज्जुदें ले जाएगा, कोई उसकी दूसरी नेकियां ले जाएगा, हत्ता के सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब क्या होगा, अभी भी मजलूम खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं हमारा ये हक मार लिया इसने, ये हक मार लिया, मेरे पैसे लेके भाग गया था, मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया था, मुझे इसने गाली दी थी। तो मजलूमों के फिर जो गुनाह है इस जालिम पे डाल के उनको बदला चुकाया उनका जाएगा। अब इसका अंजाम क्या होगा, ये है मुफलिस। देखो कितनी सारी ढेरों नेकियां लेकर आया था, अब कंगाल हो गया, बिल्कुल फकीर हो गया। अब इसका अंजाम है कि ये जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना। ये है फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस ये है। तो मुफलिस उसको समझते जिसके पास पैसे नहीं है, ये मुफलिस देखो। तो यहां पे कोई किसी को रोटी खाने को ना भी मिले, लेकिन अगर वहां पे वो कामयाब हो गया तो सबसे बड़ा मालदार वो है। और यहाँ पे कोई कितना ही मालदार हो, कितना ही बड़ा बादशाह हो, लेकिन उस दिन का मुफलिस अगर बन गया ना, तो जहन्नुम उसका अंजाम है। इसीलिए बुखारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के जिम्मे किसी का कोई भी हक हो, उसको चाहिए कि दुनिया में ही उसको अदा कर दे, या माफ करा ले, माफ करा के सुबकदोश हो जाए, वरना कयामत के दिन तो दिरहम और दीनार तो नहीं होंगे जिसका मुतालबा होगा। दिरहम दीनार तो नहीं कोई मांगेगा, ना वहां पे होंगे। अब उसको उस शख्स के आमाले साले देकर बदला चुकाया जाएगा, आमाले साले खत्म हो जाएगा तो उसके मुताबिक मजलूम का गुनाह इस पे डाल दिया जाएगा। हमने कितने हकूक अदा करने होते ना दुनिया में, किसी के पैसे हमारे जिम्मे हैं, कहीं विरासत के हकूक हमारे जिम्मे हैं, कहीं कोई और चीज हमारे जिम्मे है किसी का हक अदा करना, कहीं किसी के खिलाफ बात की भी है उससे माफ करवानी है, कहीं किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती की भी है उससे एक्सक्यूज करना, उसको सॉरी करना। नहीं करते इस दुनिया में ना, अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला समझते हैं ना, लेकिन वहां पे जाके फिर क्या होगा इन सब को, फिर इस करेंसी में तो नहीं, डॉलर तो आपके पास होंगे नहीं, फिर ये नमाजें वगैरह ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। कितनी मुश्किलों से इंसान ये निकियां जमा करता है, लेकिन वहां जाके ये सब तकसीम हो जाएंगी। तो अब क्या है ये यौम तगाबन है कि नहीं, गबन हो गया इसके साथ, इस शख्स के साथ गबन क्या हुआ, लॉस ही लॉस, नुकसान ही नुकसान, एक का हिस्सा दूसरे को मिल गया और ये महरूम रह गया। गबन ज्यादातर तो खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल होता है ना, तिजारत में, कि घाटा हो गया किसी को, गबन हो गया। लेकिन यहां पे देखें जिंदगियों में, जिंदगियों का गबन हो रहा है। ये है इस दुनिया की जिंदगी का रिजल्ट का दिन, जो मुत्तगाबन। आज तो यहां पे गलत कामों के अंदर एक दूसरे के हामी, मददगार, वफादार होते हैं, एक दूसरे के सपोर्टर बन जाते हैं, वहां पे जाके देखो कैसे इंसान गबन का शिकार हो जाएगा, उसकी नेकियां दूसरे ले जाएंगे। इंसान ना हक हमदर्दियां करता है, ना हक किसी को सपोर्ट करता है, तो उस दिन गबन का शिकार हो जाएगा। तो गबन जो होता है ना, देखें इंसान के साथ ऐसे होगा वहां पे, ये बिल्कुल गैर महसूस तरीके से, देखिए ना यहाँ पे पता थोड़ी चल रहा है हमें कि कहाँ कहाँ हम ऐसे अमल कर रहे हैं कि वहां पे गबन हो जाएगा, वहां जाएंगे तो पता चलेगा, हाय हाय मेरी तो नमाज भी चली गई थी इसकी वजह से, इस ये फलां, इसने मेरा रोजा ले लिया, इसने मेरी जकात के वो ले लिए, इसने सदकात मेरे ले लिए। यहाँ पे तो इंसान गैर महसूस तरीके से समझ ले दूसरों को देता जा रहा है, सब कुछ डूब जाएगा इस तरह से। आप देखें, खुद ही सोचें, दुनिया में अगर किसी को जरा सा भी माली फायदा हो जाए, किसी ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया मसलन, और उसको स्टॉक्स ऊपर चले गए, कौड़ियों के भाव लिए थे लाखों में चले गए, या किसी ने मामूली से सरमाए के साथ कोई कारोबार शुरू किया था, वो कारोबार ऐसा चमका के वो करोड़पति बन गया, होती है ना मिसालें आपके सामने, या किसी ने कोई जमीन जायदाद खरीदी और उसकी कीमत आसमान से बातें करने लगी, तो हम क्या कहते हैं ऐसे शख्स को, क्या बोलते हैं आप, कितना लकी है ना, कितना किस्मत का धनी है, कितनी खुश किस्मत है भाई, इसकी तो किस्मत ही बड़ी अच्छी है, ऐसा ही कहते हैं ना। और अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो जाए, किसी का सरमाया डूब जाए, या किसी की जॉब चली जाए, तो हम उसके पास अफसोस करते हैं, कहते हैं हाय बेचारे, इसकी तो किस्मत ही खराब है बेचारा, कितना अफसोस होता है। क्या कभी भी कयामत के दिन के आपने प्रॉफिट लॉस का सोचा, जो वो हार और जीत का दिन है, हाँ उसका कभी सोचा, जब मजलूम जालिम की नेकियां ले जाएगा, जालिम का गबन हो जाएगा, या जब जन्नत की जगह जो जन्नत में जगह होगी वो दूसरे जन्नती ले जाएंगे और एक इंसान जहन्नुम में चला जाएगा। दुनिया की हार जीत की हमें कितनी फिक्र भी होती है और कितना दूसरे से अफसोस होता है, मगर असल हार जीत तो वो है कि जिसके बाद कोई और फैसला नहीं होगा, जो वहां हार गया उसकी कभी जीत नहीं है, और जो वहां जीत गया वो कभी हारेगा नहीं। इसीलिए तो जब मीजान कायम होगी, नेकियां और बदियां तुलेंगी, तो एक फरिश्ता खड़ा होगा, जब तुल जाएंगी ना, एक फरिश्ता खड़ा होगा जो बाकायदा ऐलान करेगा, सारी मखलूक है ना उसके अंदर ऐलान होगा, अनाउंसमेंट हो रही है, फलां बिन फलां की, पूरा नाम लेके, फलां बिन फलां की नेकियां बढ़ गई हैं और उसके गुनाह घट गए हैं, आज ये कामयाब हो गया, आज के बाद ये कभी नाकाम नहीं होगा, और फलां बिन फलां की, किसी और का भी आएगा फेल होने वाले का, फलां बिन फलां की नेकियां घट गई हैं और उसकी बुराइयां बढ़ गई हैं, आज ये नाकाम हो गया, आज के बाद ये कभी कामयाब नहीं होगा। असल हार और जीत तो ये है। इस दुनिया की हार जीत भी क्या है कि अगर एक फील्ड में जीत भी जाते हैं तो दूसरे में हार जाते हैं, अगर पैसे के मैदान में कोई जीत गया तो सेहत के मैदान में हार जाता है, अगर घरेलू जिंदगी के मैदान में कोई जीत गया है तो और किसी माल या रिस्क के मामले में हार जाता है, अगर कोई करियर के मैदान में जीत गया तो औलाद के मैदान में हार जाता है। तो यहां तो एक जगह इंसान जीत रहा है तो दूसरी जगह हार रहा है, ये भी कोई जीत है और हार है। एक जगह पे देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से कोई जीत रहा होता है, दूसरी जगह देखो तो वो कैसे हथियार डाले हुए होता है। इसको लोग खुशकिस्मती कहते हैं, इसको जीतना कहते हैं, इसको कामयाबी कहते हैं। आप देखते हैं एक बंदे को बहुत मालदार है, आप कहते हैं हाँ कितना खुशकिस्मत है ना, इनके पास तो सब कुछ है, देखा है हर साल नई ब्रांड की गाड़ियां ले रहा है, उसको जरा अंदर से टटोलें तो सही, पता चलता है औलाद के हाथों इतना दुखी है वो। एक औरत का आप देखती हैं बड़ा अच्छा घर बार है, आप देख के बड़ा रश करती हैं, वाह क्या घर है इसका, असल खुशकिस्मत तो ये है, और हमारा घर देखो, उसी को अंदर से टटोलें, कोई बीमारी है जो उसको अंदर अंदर खा रही है। मेरा आप किसी को देखती हैं बहुत डिग्री है, बहुत कमाल की जहानत वाली है, आप कहती हैं वाह भाई क्या जहीन है, और क्या इसके पास डिग्री है, और इसने तो टॉप किया, और इसने ऐसे किया, जरा उसको टटोलें तो पता चलता है शौहर के हाथ तो दुखी हुई भी है। तो ये भी कोई भला जीत हार का मैदान है, जहां हर कोई हारा हुआ है, जो जीता है वो भी हारा है, जो हारा है वो भी तो हारा ही हारा है, हर एक हारा हुआ है। किसी को सब कुछ मिल जाए, सारी दुनिया में खुशियां मिल जाए, तब भी एक दिन वो मौत से हार जाता है, यहां का बादशाह भी हार जाता है, फकीर भी हार जाता है। तो ये भी कोई जीत है जिस पे इतराना, और ये भी कोई हार है जिस पे इंसान रोए है? हम कितना यहां के हारने पे या यहां के लॉस पे हम कितना गम मनाते हैं, खुद सोचें आप जरा, और यहां पे जीतने पे हम अपाही से बाहर हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, हम एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गए, गम भी इसी तरह और खुशियां भी इसी तरह हम मनाते हैं, ये हम कितने धोखे में है ना, कोई चीज यहां की पायदार नहीं है। आप जीत का भी मजा लेने ही लगते हैं तो आगे से कोई हार ऐसी आ जाती है, कोई ऐसा गम आ जाता है, इंसान हार जाता है उसके सामने। तो देख लें, इंसान मेहनत करता है यहां पे, और इसमें मुसलमान भी होंगे जिन्होंने दुनिया में मेहनत की, नेकियां अपने अकाउंट में जमा कराते रहे, लेकिन उनकी नेकियों को कोई और कैश करा के ले गया, उनके साथ भी कैसा गबन हो गया, वो भी कैसे हार गए। तो जो वहां पे हार गया उसके लिए बहुत बड़ी हार है, कभी जीतेगा नहीं वो। तो वो है यौम तगाबुन, एक का हिस्सा दूसरे को मिल जाएगा, अपने हक से इंसान महरूम हो जाएगा, हर कोई हसरत करेगा। तो वो जमा होने का दिन बड़ा घाटे का दिन है, बड़ा हार जीत का दिन है। वमन युमिन बिल्लाही वयामल सालेहन, और जो ईमान लाया अल्लाह पर और उसने अमल किए साले, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, तो अल्लाह ताला उसकी छोटी मोटी कोई गलतियां बुराइयां वो उसे वैसे ही दूर कर देगा। जो इंसान ईमान ला के ना कोशिश करता जा रहा है नेक अमल करने की, इसमें भाग दौड़ कर रहा है, जाहिर है फिर इंसान गिरता भी तो है, गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में। अब इंसान कुछ भागेगा, कुछ दौड़ धूप करेगा, तो जाहिर है किसी दिन कदम फिसलेगा भी। तो अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों की बुराइयों को भी दूर करते हैं। अल्लाह को पता है कि ये कितनी स्ट्रगल कर रहा है, इसे गलती भी हो रही है, तो कोई नहीं, अल्लाह जाने देता है, माफ कर देता है, दूर कर देगा। और युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, और दाखिल कर देगा उनको ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। लेकिन शर्त क्या है? ईमान लाके साले अमल करता चला जाए, वो इस रास्ते में ना पीछे हो, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो दौड़ लगा रहा है, वो कोशिश में लगा हुआ है। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहने वाले हैं इन जन्नतों में। अब ये काफी था ये इतना कहना, मगर फिर फरमाया अबदा, हमेशा हमेशा हमेशा। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। तुम इनको कामयाबियां समझते हो? कामयाब तो वो है जो वहां दाखिल हो गया, कामयाब तो वो है कि जो जहन्नुम से बच के जन्नत में आ गया। ये है कामयाबी, ये है जीत जिसके बाद कोई हार नहीं है। इसीलिए तो अहले जन्नत सबसे ज्यादा इसी बात पे तो खुश होंगे कि अब यहां से हमें कोई नहीं निकालेगा। जब ये ऐलान हो जाएगा ना, अब तुम हमेशा यहां रहोगे, अब तुम्हें कोई नहीं है मौत, अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, अब तुम्हें कोई बुढ़ापा नहीं है, ये सारी ऐलान होंगे ना वहां पे, तो वो इतने खुश होंगे। इसलिए कि जब इंसान को कोई अच्छी चीज मिल जाती है, आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिले, सबसे पहले आपको किस चीज का डर लग जाता है? अरे कहीं छीन ना जाए मेरे से, यही धड़का लगा रहता है ना वहां पे। इनको ये इत्मीनान हो गया कि अब हमें नहीं किसी ने निकालना, बस वंस एंट्री, जन्नत में एग्जिट कोई नहीं है, एंट्री ही है। जो एक दफा एंटर हो गया, अब वो कभी नहीं निकाला जाएगा, हमेशा वहीं रहेंगे। वल्लदीन कफर हुआ कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को, कुफर करके तकजीब की, उलाइका असहाबुन नारी खालिदीन फिया, यही लोग हैं जो नार वाले, आग वाले, हमेशा रहने वाले इसमें। व बिसल मसीर, और कितना बुरा ठिकाना है ये है असल हार, जिसके बाद कोई जीत नहीं है। अब आप देखें ये दोनों आयतों में थोड़ा सा फर्क देखें, आयत 9 और 10 में, दोनों में है खालिदीन फिया, लेकिन आपने नोट किया कि आयत नंबर 9 में अबदा का भी लफ्ज आया, जहन्नुम वाली में अबदा का लफ्ज नहीं है। इसी तरह सूरह बय्यिना में भी जहन्नमियों के लिए अबदा का लफ्ज नहीं है, जन्नतियों के लिए है। आप नोट करिएगा वहां पे 30वें पारे में, गो कि हम सब का ईमान है कि जन्नत भी हमेशा 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 के लिए और जहन्नुम भी हमेशा 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 के लिए। लेकिन जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, वल्लाहु आलम, बाकी कुछ इसके अंदर मेरा कोई नहीं ओपिनियन, बस एक कोटिंग कोट आपको बता देती हूँ एक बात, कि इमाम इब्ने तैमिया जो है उन्होंने इन्हीं आयात को लेकर, और फिर वो कहते हैं कि जहन्नुम जो है ना बहुत लंबी बहुत लंबी बहुत लंबी, खालिदीन फीहा है ना, हमेशा रहने वाले, यानी पता नहीं कितने जमाना होगा होगा, गुजरेगा वक्त गुजरेगा, लेकिन आखिर आखिरकार एक दिन वो कहते हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जन्नत वालों के लिए अबदा है हमेशा हमेशा, लेकिन इनके लिए अबदा का लफ्ज नहीं है। क्योंकि वो इसकी दलील ये देते हैं कि अल्लाह की रहमत जो है ना वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट, लेकिन उसकी सजा जो है वो इन्फिनिट नहीं है, जितना जुर्म है उस मुताबिक सजा है। तो कोई तो हद होगी ना, कोई तो हद होगी सजा की, चाहे वो कितनी ही लंबी हो, करोड़ों 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 साल गुजर जाए, लेकिन कोई वक्त तो होगा कि जब वो खत्म हो जाए। पर ये वल्लाहु आलम वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, ये उनका सिर्फ एक ओपिनियन है जो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी अहले सुन्नत का तो हमारा यही अकीदा है کہ دونوں ہمیشہ کے لیے ہیں. واللہ عالم بہر کیف. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.